Let me move on to my topic. Law of karma. I have borrowed a mantra from Atharveda. This is na kilmish matra nadharo asti na yan mitrahe samamamana eti anunam patyam nehitam na etat paktayam pakva punaya vishati. What it is saying is, na kilbish matra. There is no imperfection in the law of karma, the way it is administered. It is exactly an eye for an eye. There can be no imperfection at all. After all, it is a law from that Supreme Being, Ishwar, and also He is the one who enforces it. There may be some deficiencies in the law of land, in the world that we live in our community, and in its enforcement. Our courts may not be able to dispense justice in an absolute perfect manner. But when it comes to Paramatma, He is perfect in all His beings, and so is true in His dispensation of law of karma. The next slide. Nādhāro asti. There is no basis for deviation. There is no favoritism. You cannot say that, like in a court, if you go with a friend of yours, maybe that can improve your chances. But here, Paramatma does not need any witness's account, because He is the witness. He sees everything what's happening. And not only what is happening, He even knows what is happening within you, which you may also not be knowing. But whenever you execute a karma, your intentions, your thoughts, your expectations, all are known to Him. Na yan mitrahe samamana eti. Nobody can come with friends, that is, must come alone. As the responsibility for your karma lies entirely with you, even if you were instigated by your friends in acts such as smoking, drinking, gambling, cheating, etc. And nor do they obtain rewards for your karma. You may do all kinds of things for the benefit of your family, but finally, they will not go through the rewards. It is for you to go through. It is you exercised your freedom of action. Anunam patyam nehitam na etat paktaya. Imagine, so that is what is law of karma is. Imagine a vessel in which you are putting into all ingredients. Your karma is your ingredient. And it takes time to get cooked. Any dish you want to prepare, it takes some time. That is its gestation period. Until then, it is just lying there, what is called karmashaya. So karma gives rise to the impatience of karma in our mind. That is called karmashaya. And then it goes through gestation period when it gets ripened. Pakjana. So that is what is the vessel of karma is filled by your karma and is fully secured that nothing can spill out of it or nothing can add into it. It is absolutely what you did in the exercise of your free will. Pakva punaya vishat. You eat what you have cooked. That is what we say, bolchal mein jo bolte hain, jaisi karni vaisi bharni. इंग्लिश में बोलते हैं यू रीप व्हाट यू सो. तो जो आपने ही डाला वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो आपने दूसरों को दिया वही वापस आपके पास आएगा. तो ये कर्म की गति है. जो हम सबको मालूम भी है, लेकिन फिर भी मौके पर हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं। तो आज जन्माष्टमी के दिन इसी का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। मैं योग दर्शन के 3 सूत्र रख रहा हूं, क्योंकि योग दर्शन का मुख्य विषय कुछ और है। योग दर्शन का विषय है चित्त वेत्ति निरोध, हमारे मन की जो भी हलचल है उसको काम डाउन करना, उसको हटा देना। जब मन में कुछ नहीं है तो क्या उन्होंने कहा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, और उसी को हम बोल देते हैं तब आपको पता चलेगा आप प्रभु की गोद में, क्योंकि उसमें के हमारे बीच में भी व्याप्य व्यापक संबंध है, यानी वो सब व्यापक है, तो जहां मैं हूं वहां भी वो है। तो यह योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य है, चित्त की वृत्तियों को कैसे रोकना, और उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन फिर वो लंबी व्याख्या करते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को 2 लाइन वाली बात समझ में नहीं आती, उनको तर्क की भाषा में समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। तो पतंजलि जी ने और भी बातें लिखी हैं। तो कर्म फल सिद्धांत इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ कर्म को, तो इससे जो संबंधित 3-4 सूत्र हैं वो मैंने यहां रखे हैं। 3 सूत्र हैं, ये दूसरा जो उनका चैप्टर है साधन पाद, उसका 12वां, 13वां और 14वां। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, मैं लंबा नहीं खींचूंगा, जो मेरा अभी तात्पर्य है ना, आई वॉन्ट टू बी मेन फोकस्ड ऑन। तो कर्म जब आप कहते हैं, अब कर्म भी हम क्यों कहते हैं, इसको बोलते हैं, वो पतंजलि जी की भाषा है कि क्लेश है हमारे अंदर। ये क्लेश वो नहीं है जो बोलचाल में हम बोलते हैं, वो जब भी आता है क्लेश पैदा करता है, वो ये वाला क्लेश नहीं है। ये क्लेश है अविद्या, और ये अविद्या भी वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हो, इग्नोरेंस, वो इग्नोरेंस तो हम सबको ही है। ये अविद्या एक विशेष प्रकार की अविद्या है, मुख्यतः कि यू थिंक योर माइंड इज योर कॉन्शियसनेस, है ना, अनात्म को आत्म समझ लेना, है ना, जो दुनिया में आजकल वही चल रहा है कि एज इफ माई ब्रेन इज माई कॉन्शियसनेस, माई माइंड इज माई कॉन्शियस। पर पतंजलि कहना चाहते हैं नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस क्या है, वो जो अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो पुरुष कहलाता है, पुरुषस्य चैतन्यम। कॉन्शियसनेस किसका गुण है, वो पुरुष का, जो जिसको बोलचाल में आत्म तत्व बोलते हैं, है ना। तो पतंजलि की भाषा में और सांख कपिल की भाषा में उसको कहते हैं पुरुष। तो पुरुष का असली गुण है चैतन्य, कॉन्शियसनेस, चेतना। जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, आप जानते हैं ये जीवित आदमी है, इसके अंदर चेतना है अभी, है ना, तभी तो मैं हाथ हिला रहा हूं। पर ये चेतना आती कहां से है, न्यूरो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट हो रहे हैं उससे आ जाती है। हम भी बोलते हैं ठीक है वो हो रहा है, लेकिन असल में उसके भी अंदर एक छोटी सी गुफा में मैं बैठा हुआ हूं, है ना, उसको कहते हैं पुरुष। लेकिन उसके बदले हम बोले कि नहीं, ब्रेन इज माई कॉन्शियसनेस, माई माइंड इज माई कॉन्शियसनेस। तो ये हो गई पतंजलि की अविद्या, इसी को क्लेश का। तो क्लेश जिसके मूल में है, है ना, तो जो ये अविद्या से है, तो जिसके क्लेश होता है वही कर्म करता है, और उसी के कर्म से संस्कार बनते हैं। तो कर्म के जो संस्कार हमारी मेमोरी में जीवित हैं, हमारी मेमोरी को कहते हैं अहंकार। मैं आपके ऊपर नए नए शब्द नहीं थोपना चाहता, क्योंकि ये बड़ा जटिल मामला है, मैं बहुत आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता। पर मोटे तौर पर हमने कुछ कर्म किए तो कर्म की इमेजेस बन जाती हैं, वो हमारी मेमोरी में बनी हुई है, उसको कहते हैं इम्पेशंस, है ना। जब आप एक स्किल बेस्ड कुछ भी सीखते हैं, ड्राइविंग है या बच्चे राइडिंग है बाइसिकल, तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस बार बार करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से वो एकदम उसका इम्पेशन पड़ जाता है, फिर बाद में वो करना आसान हो जाता है, फिर वह स्वभावगत हो जाता है ना। तो हमारे बार बार कर्म करने से, प्रैक्टिस से वो इम्पेशन इतना पक्का हो जाता है कि अभी हम ड्राइविंग कर रहे हैं और किसी से बात भी कर रहे हैं, बच्चा साइकिल भी चलाया और थोड़ी देर हाथ भी छोड़ देता है, तो उसकी प्रोफिशिएंसी आ जाती है ना। तो प्रोफिशिएंसी आना और शुरू में पहली लेसन लेना, इसके बीच में क्या किया उसने, बहुत बार प्रैक्टिस की तो उससे संस्कार बन गए। उस संस्कार को हम बोलते हैं कर्माशय, है ना। तो कर्माशय से आप बोलते हैं कि उससे फल मिलता है, जो वेद मंत्र में देखा हमने कि कर्माशय है, कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, है? जैसे चाकू से मैंने कुछ असावधानी रखी, मेरी उंगली कट गई, और कुछ कर्मों का फल बहुत समय बाद मिलता है। हम लोग कुछ पढ़ते लिखते हैं लेकिन वो बाद में वो चीज काम आती है, तो देर इज ए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, है ना। तो उसी का पतंजलि ने क्या कहा, कर्माशय का फल मिलता है लेकिन उसके दो डिवीजन उन्होंने कह दिए। क्या किया, दृष्ट जन्म में, दृष्ट यानी जो अभी चालू जीवन है इसमें कुछ कर्मों का फल मिल जाएगा, जो करेंट लाइफ है कुछ कर्मों का फल इस लाइफ में हमें मिल जाएगा। दृष्ट, दृष्ट यानी जो दिखाई दे रहा, दिखाई देने वाला जन्म यानी द करेंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, है ना। फिर उसमें दूसरा उन्होंने डिवीजन किया, अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो फ्यूचर लाइफ है, नेक्स्ट लाइफ है, ठीक है। तो 12वें सूत्र का मोटे तौर पर अर्थ क्या है, रिवार्ड्स विल कम आइदर इन द प्रेजेंट लाइफ और इन फ्यूचर लाइफ, ठीक है ना। बहुत मोटी सी बात है, मैं हम ज्यादा डिटेल में हम भी नहीं जाना चाह रहे ना? फिर 13वें सूत्र में उन्होंने क्या बोला, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोग। सती मूल्य अभी ये फिलॉसफी का विषय है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। इसका कहने का मतलब है, जो मूल में क्लेश था, क्लेश यदि अभी भी जीवित है ना, तो ये सब समाधि के बाद बहुत विवेक ख्याति हो जाती है, तो क्लेश खत्म हो जाता है, तो उसको फिर फल नहीं मिलते। ये वैसी बातें हैं, अभी हम दुनियादारी वाली बात कर रहे हैं जो हम सबके ऊपर एप्लीकेबल है। हमारे ऊपर क्या एप्लीकेबल है कि जो कर्माशय था अब उसका विपाक होगा, वो पकेगा, जो अभी वेद मंत्र में हमने देखा कि खिचड़ी पक रही है, तो वैसे ही हमारे कर्माशय का विपाक हो जाएगा, पक जाएगा। ये अभी क्या है, ये इन लोगों की सूत्र शैली थोड़ी अलग होती है, समझने में समय लगता है। अभी जो 12वां सूत्र था उसका जो लास्ट पार्ट है ना, अदृष्ट जन्म वेदनीय, उसकी यहां अनुवृत्ति है, यानी उसका अब टॉपिक चलेगा। दृष्ट जन्म का तो सब जानते ही हैं, अब पतंजलि जी समझा रहे हैं कि जो फ्यूचर लाइफ में रिवार्ड मिलता है ना, वो कैसे मिलता है। तो उन्होंने कहा कर्माशय का जब विपाक हो जाता है, पक जाता है, तो दैट रिवार्ड इज एज ए बंडल, वो बंडल है, वो एक चीज नहीं है। बंडल क्या है, उसमें तीन चीज, द डे यू डाई, हमारी डेथ आएगी ना जिस दिन, एट द मोमेंट ऑफ डेथ वो जो कर्म फल चलाने वाला है ना परमात्मा, वो हमारे ऊपर एक सील बंद कर देगा, एक लिफाफे में बंद कर देगा। क्या क्या डिसाइड कर लेगा वो, देन एंड देयर ही विल डिसाइड व्हाट इज माय जाति, व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज आई विल बी बॉर्न नेक्स्ट लाइफ, है ना। द मोमेंट आई डाई, तीन चीजें वो डिसाइड करके ठप्पा लगा देता है परमात्मा। क्या कहता है, जाति आयु भोग, है ना, विल आई बी एन ह्यूमन बींग अगेन और नॉट, आज तो ह्यूमन बींग हूं, अगले में होगा या नहीं, है ना। कोई घोड़ा बनेगा, कोई गाय, कोई बैल, कोई ऊंट, क्या क्या है, सब तरह की स्पीशीज है, तो ये जाति कहलाते हैं। ये जाति वो नहीं है जो मायावती वाले जातिवाद वाला, वो जाति नहीं है ये। ये जाति क्या है, स्पीशीज, ह्यूमन बींग्स वन जाति, घोड़ा वन जाति, ऊंट वन जाति, एलिफेंट वन जाति, ऑल द स्पीसीज आर वन जाति, है ना। फिर जाति में ही एक फैक्टर आ जाता है आयु, अब मनुष्य जाति है, पर कुछ ऐसे होते हैं बच्चा पैदा हुआ और दो महीने बाद ही मर गया, वो कुछ डिफेक्ट लेकर पैदा हुआ बेचारा, है ना, कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी उसकी, कोई है कि 8-10 साल ही जीवित है, कोई है एकदम अभी हमारे ये बॉक्स में ही बैठते हैं, रजनीश वर्मा जी, उनकी पत्नी है उदिति, वो अभी इंडिया गई हुई है, उसका भाई कैंसर से मर गया अभी बेचारा, ब्लड कैंसर से, है ना। तो कोई लोग ऐसे, जाति तो मनुष्य जाति मिली लेकिन लाइफ स्पैन भी किसी को दो चार महीने का ही मिला, किसी को 100 वर्ष का भी मिल गया, है ना। तो जाति में भी एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर आ गया, आयु। ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। जाति, दो लोग 80 साल, दो मनुष्य हैं लेकिन कोई कम जीता है, कोई ज्यादा जीता है। तो ये तीन इंडिपेंडेंट पैरामीटर बताए। खाली जाति पर पतंजलि नहीं रुक गए, जाति के बाद ही स्पेसिफाइड आयु। आयु के बाद थर्ड पैरामीटर बताया भोग, है ना। दो आदमी हैं, दोनों को 80 साल जीना है। अब कोई बेचारा झोपड़ी में गरीब आदमी, उनके यहां पैदा हुआ है, वहां पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। कोई है कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान और धर्मात्मा आदमी के घर में पैदा हुआ है, तो इनका भोग भी अलग हो जाएगा, है ना। किसी को मां का भी दूध आसानी से नहीं मिल रहा, किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, है ना। तो भोग यानी एक्सपीरियंस, सुख दुख की अनुभूति। तो किसी का जीवन बहुत सुखमय है, किसी का जीवन बहुत दुखमय है। तो ये भोग भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो गया, आप समझ गए ना। तो जाति, आयु, भोग का एक बंडल बनाकर उसका सील बंद कर दिया कि दैट्स व्हाट योर नेक्स्ट लाइफ इज, जो तुमने, दैट इज एट द मोमेंट ऑफ डेथ, है ना। फिर हम चाहे कितना ही शांति हवन कर लें, वो बदलने वाला नहीं है, वो सब वो फिक्स हो गया, परमात्मा ने कह दिया। अब फिर 14वें सूत्र में वो बोल रहे हैं ते, अब बोल रहे हैं कि ये सब सुख और दुख का जो चक्कर है, ये आर्बिट्री नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि किसी को सुख होया किसी को दुख होया, देयर इज अ कोरिलेशन। तो ते, ते बहुवचन में कहते हैं दैट, दे, दे और ते भी मिलता जुलता सुनने में है, इंग्लिश का दे और संस्कृत का ते। तो दे माने यह क्या है, ये जो फल है, ये जो जाति आयु भोग वाले फल हैं, ये कैसे होते हैं, हिलाद पैताप फला। हिलाद कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना आह्लाद हुआ, बहुत खुशी होना, और पैताप यानी दुख होना। ये सुख और दुख वाले फल हैं, ये कहां से पैदा होते हैं, तो उन्होंने कहा हेतु यानी दैट इज द कॉज ऑफ इट, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात, है ना। तो करेस्पॉन्डेंस लगानी पड़ती है, आपने पुण्य कर्म किया है तो आपको सुख मिलेगा, आपने अपुण्य कर्म किया है तो आपको दुख मिलेगा। तो पतंजलि जी ने कहा है कि आर्बिट्री कुछ भी नहीं है परमात्मा की सृष्टि में। जो व्यक्ति आज जिस क्षण सुखी है, तो उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसका उसको फल मिलेगा। हमें पता नहीं चलता किस कर्म का मुझे आज फल मिलेगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज ए करेस्पॉन्डेंस, वी मे नॉट बी नोइंग, है ना, देयर इज वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। तो उन्होंने कहा सुख का इज ड्यू टू द पुण्य कर्म, एंड जो दुख है उसका है उसने कुछ गलत काम किया है, अपुण्य। अब यहां बहुत से लोग, इस पर मैं थोड़ा और समय बिताऊंगा, है ना, कि बहुत से लोग गलती से अपुण्य को पाप बोल देते हैं। बहुत से लोगों ने योग पर किताब भी लिख दी, और किताब क्या लिख दी कि अपुण्य को पाप लिख दिया। लेकिन पतंजलि जी भी जानते थे, वो भी चाहते तो पाप लिख देते, पर उन्होंने पाप नहीं लिखा है, अपुण्य लिखा है। तो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा और आप समझेंगे। अभी मैं तीन डायग्राम दिखाने वाला हूं, कलर डायग्राम, स्कीमेटिक है। ये जो सारा खेल है ना, 12वें और 13वें वाला, इस पर व्यास ने बड़ा ही लंबी कॉमेंट्री लिखी है, तो आपको समझ में आ जाए, मैंने कोशिश की है। तो ये कर्म फल की जटिलता है, जिसको मैं समझा आया हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हाँ स्लाइड नंबर 1 है। अब तीन डायग्राम आएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, क्योंकि ये कर्म फल सिद्धांत बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा माना जाता है, बहुत जटिल है। व्यास जी ने भी अंत में कहा, जैसे एक हमारे साइंटिस्ट ने कहा, हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, उन्होंने कहा कि एट द सेम मोमेंट यू कैन नॉट नो द मास एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यू विल नो एक्यूरेटली, आइदर यू विल नो मास और यू विल नो मोमेंटम, वन ऑफ। तो उन्होंने डिक्लेयर ही कह दिया कि आप जान ही नहीं सकते, ये अनोएबल है, अनोएबल। तो वैसा ही स्टेटमेंट व्यास का है कि कर्म फल सिद्धांत को हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेरा थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फ्लो चार्ट में थोड़ा आपको समझाया। तो दिस स्लाइड इज फॉर द एन माइनस वन एथ लाइफ। आई डोंट नो इफ यू एबल टू रीड इट, थोड़ा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, अक्षर पढ़ने में आ जाए। तो सबसे ऊपर वाला जो है ना डार्क ब्राउन, दैट इज previous life. अब थ्योरेटिकली स्पीकिंग इट मस्ट बी इन द ह्यूमन फॉर्म. अभी मैं उस पेचीदगी में नहीं जाया कि पर ये भी आपको समझा दूं एक बार बोल कर, ज्यादा इस विस्तार से नहीं जाएंगे हम. केवल मनुष्य ही कर्म कर सकता है, तो मनुष्य योनि को ही कर्म योनि बोलते हैं हम, है ना. पशु पक्षी कर्म योनि में नहीं है. तो आप बोलेंगे घोड़ा दौड़ता है, ये है, इज इट नॉट इज कर्म. तो उसको हम कर्म नहीं बोलते हैं, उसको उसकी क्रियाएं बोलते हैं, एक्टिविटीज हैं, क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं है कर्म करने की. जिसको फ्रीडम नहीं दी है उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आप समझ गए ना. तो कर्मों का फल मिलेगा ये खाली मनुष्य पर लागू होता है ना. तो ये एक थोड़ा फिलॉसफी की बात है, तो इसको आप समझ लीजिए. तो दैट्स व्हाई आई हैव टू से प्रीवियस लाइफ इज इन ह्यूमन फॉर्म, नहीं तो ये डायग्राम का कोई मीनिंग नहीं है ना. क्योंकि हम कर्म फल सिद्धांत की बात करें तो आप समझिए, हम अगली स्लाइड में हम बात करेंगे करेंट लाइफ, एनेट लाइफ. तो एन माइनस वन है, एन इज ए जस्ट ए नोशनल नंबर, है ना, आप चिंता मत कीजिए उसकी. तो कल्पना कीजिए प्रीवियस लाइफ में मैं मनुष्य हूं, तो ये जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है तो उसकी ऊपर की लाइन है बर्थ, नीचे की लाइन है डेथ. तो माई लाइफ एंड्स. तो डेथ के समय जैसे मैंने समझाया, तो 12वां जो सूत्र था उनका कि दृष्ट जन्म वेदनिया प्लस अदृष्ट जन्म, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, उसमें हमें कर्मों का फल मिलेगा. तो अब जो सेकंड कंपोनेंट है ना, जो फ्यूचर लाइफ वाला, अब दैट इज बिकमिंग एप्लीकेबल. तो आप समझ गए कि जो डेथ वाली लाइन है उसके नीचे मैंने जो लाइट ब्राउन बॉक्स रखा है उसमें क्या लिखा है, इम्पेशंस ऑफ कर्म, व्हाट इज कॉल्ड कर्माशय एट द टाइम ऑफ डेथ. इसका जो पिछले जन्म का था वो सब तो चुक गया हमारा हिसाब. अभी कई फॉरवर्ड में क्या होने वाला है, व्हाट इज टू बी रिवॉर्डेड इन द नेक्स्ट लाइफ. सो वो जो है टू बी एक्सपीरियंस्ड इन फ्यूचर लाइफ और दृष्ट जन्म वेदनी. अब इसके भी दो पार्ट बनने वाले हैं, है ना, इसके भी दो पार्ट बने. तो ये व्यास जी ने हमें समझाया, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता. तो पतंजलि जी ने तो सूत्र में लिख के छोड़ दिया, पर इसीलिए भाष्य कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाते हैं. तो व्यास जी बताते हैं कि जो अदृष्ट जन्म वेदनी है इसके दो कॉम्पोनेंट बनेंगे. एक का नाम उन्होंने बताया प्रधान, और दूसरे का जो ब्लू कॉलम है प्रधान का नाम दिया व्यास जी ने, मैंने इंग्लिश में उसको लिख दिया प्राइमरी, है ना. और जो सेकंड ब्लॉक है डार्क ब्राउन कलर, है ना, ये वर्टिकल ब्लॉक, उसमें है सेकेंडरी, व्यास जी ने नाम दिया उपसर्जन, है ना. तो ये दो नाम क्यों दिए गए, ये दो कंपोनेंट, क्योंकि वो जो हमें रिवार्ड मिलना है जाति आयु भोग, जाति आयु भोग इज डिटरमिंड बाय दिस ब्लू लाइन. ब्लू कंपोनेंट जो है प्रधान, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा जाति आयु भोग, है ना. अब बोलेंगे कि सभी का हमें जाति आयु भोग क्यों मिल गया, क्यों नहीं मिलता. तो देखिए, समझिए प्रीवियस लाइफ में आई वॉज ए ह्यूमन बींग, है ना, और समझिए, जस्ट कल्पना कीजिए मैं बहुत मांसाहारी था, मुझे मांस खाने में मजा आता था, बहुत से लोग हैं, है ना, पर मैंने बहुत अच्छे भी काम किए कुछ कुछ करके. तो परमात्मा ने दया करके मुझे कहा चलो तुम्हें एक बार मनुष्य जन्म दे देते हैं, है ना. यदि मैं ज्यादा दुष्ट होता तो मांसाहारी होने के कारण बोलते हैं कि मुझे शायद गाय का या बकरी का जन्म मिल जाता है, कि मुझे भी अब पता चले कि लोग काटते हैं तो कैसा लगता है ना. तो जन्म की गति अलग अलग होती है. तो अभी क्या होगा कि क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य योनि के साथ कंपेटिबल नहीं है, मुझे भविष्य में एक बार पशु योनि में जाना ही होगा, क्योंकि आई वॉज ईटिंग मीट टू ए लार्ज एक्सटेंट, है ना. तो वो जो चीजें हैं वो इनकॉम्पेटिबल हैं, ये वो इस साइड में जाएंगी, है ना, आप समझ गए ना. तो व्हेन आई डाइड इन द प्रीवियस लाइफ, दो बंडल बनाए जाते हैं, एक बंडल से मेरी नेक्स्ट लाइफ इज डिटरमिंड, बट बहुत सारा कर्माशय ऐसा है जो पिछले जन्म का है और बहुत पुराने जन्मों का भी है, विच आर नॉट कंपेटिबल विद दिस साइड, ब्लू साइड, है ना. तो उसको कई फॉरवर्ड में इस साइड में रख दिया जाता है, आप समझ गए मेरी बात. तो वो सेकेंडरी साइड हो गया. तो अब मेरी जब जिंदगी आई तो ये बंडल, तो इसका तो फल मिल गया मुझे, जाति आयु भोग मिल गया मुझे, वह जिन कर्मों का जो पहले से चले आ रहे हैं प्लस प्रीवियस लाइफ वाले जो अभी एक जगह कोने में बैठे हुए हैं वो इस कॉलम में है। आप समझ रहे मेरी बात? अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, दिस कम्स माई करेंट लाइफ, अब मैं आज के जीवन में आ गया, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। अब मेरे लिए ये ब्लू कॉलम में चल रहा हूं और इस जिंदगी में भी मैं बहुत से कर्म कमा रहा हूं, मेरा कर्माशय बिल्डअप होया है ना। तो जो पतंजलि का स्टेटमेंट नंबर 12 था कि मैं हर कर्म से दृष्ट जन्म मिलेगा, यानी मैं जो भी कर्म इस ब्लू कॉलम में करता जा रहा हूं, द टॉप लाइन इज बर्थ एंड लास्ट लाइन इज डेथ। ब्लू कॉलम में आई एम डूइंग कर्म एवरी मोमेंट। कुछ कर्म यहां भी दो डिवीजन बन जाएंगे, कुछ कर्म का फल इसी लाइफ में मुझे मिलता जाएगा और कुछ कर्म का फल मुझे फ्यूचर लाइफ में मिलेगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ये बात? तो यहां भी अब दो बॉक्स मैंने बनाए, रेड कलर एंड लाइट ब्राउन। अब रेड कलर में भी दो डिवीजन बनते हैं, A1 एंड A2 है ना। ऊपर आप स्क्वायर बॉक्स देख, इसमें क्या, ये थोड़ी डिटेल की बात है पर आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है। इस जन्म में मैं बहुत से कर्म करता हूं जिससे मेरी आयु बढ़ सकती है, बढ़ सकती है या नहीं। तो परमात्मा ने आयु दी लेकिन दैट इज नॉट फिक्स्ड। मैं अच्छे लाइफ स्टाइल से अच्छा खा पी कर आई कैन एक्सटेंड माई आयु, और गलत काम करके आयु कम भी कर सकता हूं। तो जाति आयु भोग वॉज फिक्स्ड बट दे आर नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड, आई कैन मॉडिफाई देम, है ना। जब मैं कुछ कर्म केवल आयु को मॉडिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एक विपाक, केवल भोग को मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने अच्छा खाने के लिए मैं अच्छी मेहनत की, खूब कमाया, अच्छा खाता हूं, तो समटाइम्स आई एम एबल टू मॉडिफाई माई भोग ओनली, समटाइम्स आई एम एबल टू मॉडिफाई माई आयु एज वेल एज भोग। तो ये A1 और A2 में O आ गया, ये हो गया दृष्ट जन्म वेदनीय, क्योंकि आई एम डूइंग सर्टेन कर्म विच इज ब्रिंगिंग इट्स रिवार्ड इन द करेंट लाइफ इटसेल्फ, है ना। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अदृष्ट जन्म वेदनीय वाले होते हैं, उनका रिवार्ड अगले जन्म में आएगा। तो वो है ये पार्ट बी जो लाइट ब्राउन है, है ना। व्हाट आई हैव गैदर्ड इन द करेंट लाइफ दैट इज द ब्लू कॉलम, व्हाट आई हैव गैदर्ड इन ब्लू कॉलम इन द करेंट लाइफ, इसमें भी दो पार्ट हो गए, कुछ का मैंने भोग अभी कर लिया और कुछ है कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लाइफ। अब उधर मैं पिछले जन्म से वो लाया ही था बहुत सा जो पुराना अकाउंट, तो पुराना अकाउंट अभी भी वो चल रहा है। अब उसके भी व्यास जी बताते हैं तीन भाग हो गए बड़ी मजेदार कहानी है उसकी, वो बोलते हैं तीन गति होगी, क्या होगी। तो अब एक पहला पार्ट, ये पार्ट मैंने उसका नाम दिया PQ&R। तो P में क्या होगा, वो एनाहिलेशन हो जाएगा। यदि समझिए मैंने बहुत बुरे काम किए थे पिछले किसी जन्म में, पर इस जन्म में मैं ये कुछ एकदम जैसे वाल्मीकि का बदल जाता है ना, या मुंशी राम श्रद्धानंद बन गए, किसी किसी का बहुत ही काया पलकल्प हो जाता है ना, जीवन एकदम बदल जाता है। तो क्या होता है कि कुछ उसके कर्म थे जो उसके ऑपोजिट थे वो स्वाहा हो जाते हैं, उसको बीज दग्धवत बोलते हैं, वो अकाउंटेड हो जाते हैं। अब ये कर्म फल की थोड़ी कठिन परिभाषा है कि भाई उसने अपने फल नहीं दिए वो कैसे गायब हो गए, नहीं फिर इसका भी व्यास जी बोलते हैं गायब तो हो गए लेकिन उन्होंने अपना फल भी दे दिया, क्योंकि जब तक वो जीवित थे वो आपको परेशान करते रहे, तो उन्होंने आपको परेशान किया यही उनका फल था, और अब आपने कोई बहुत महान अच्छे कर्म कर लिए तो अब उसकी जरूरत नहीं, परमात्मा उसको राइट ऑफ कर देता है ना। तो ये हो गया पार्ट पी। अब क्यू में क्या हुआ, अब क्यू में क्या हुआ कि ये जो आपका जो ब्लू कॉलम से नेक्स्ट लाइफ बताएगा, अब इसका जो पोर्शन है जो नेक्स्ट लाइफ से कंपेटिबल है वो उससे जुड़ जाएगा। आप समझ गए ना, क्योंकि पहले जो था वो जो नेक्स्ट लाइफ से कंपेटिबल N-1th लाइफ में कुछ थे जो ब्राउन कॉलम में आ गए क्योंकि दे वर नॉट कंपेटिबल विद योर प्रेजेंट nth लाइफ। लेकिन अब जो nth लाइफ से यू आर डिटर्मिनिंग योर N+1th लाइफ नेक्स्ट लाइफ, तो हो सकता है इसके कुछ कर्माशय उसके साथ मेल खाते हों, तो द पार्ट कॉम्पोनेंट क्यू क्या है जो उसके साथ मिल जाएगा। तो एक है वो देखिए वहां से चल के यहां आने वाला है, और फिर अब ये सबसे चमत्कार चीज है द लास्ट कॉम्पोनेंट आर, ये अभी भी इसका कोई हिसाब नहीं होया, दिस विल अगेन गो एज कैरी फॉरवर्ड, ये नेक्स्ट लाइफ का प्रधान में नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइफ का सेकंड डे आएगा। तो आइए मैं अब नेक्स्ट लाइफ वी आर जस्ट लुकिंग एट इट इन ए नोशनल सेंस, हम नहीं जानते अगला जन्म क्या होने वाला है, बट नेक्स्ट लाइफ एन प्लस वन एथ लाइफ में ये जो एरो आए ना आप इनको ध्यान से देखिए, ये जो लाइट ब्राउन एरो आया वर्टिकल, ये इस लाइफ का जो प्रधान पार्ट है डायरेक्ट ओ है, ठीक है, और जो साइड से ये ब्लू एरो आया है ये जो इस लाइफ के जो कलर ब्राउन कॉलम से निकला है विच इज नाउ कंपेटिबल विद द नेक्स्ट लाइफ, वो यहां आ गया। अब देखिए प्रेजेंट लाइफ से कुछ कंपोनेंट है जो प्रधान से नहीं मेल खाता है, वो अब आपका अगली लाइफ में वो सेकेंडरी बन जाएगा, है ना, और जो पहले से जो कंपोनेंट आर है जिसका अभी तक हिसाब ही नहीं हुआ वो अभी भी छिपा हुआ दुबा हुआ बैठा है। तो यहीं पर व्यास जी बोलते हैं कंपोनेंट आर के बाद सृष्टि का जो ये विचित्र खेल चल रहा है दैट इज ड्यू टू दैट कंपोनेंट आर, हमें नहीं मालूम कब किस कर्म का क्या फल हो जाए, हम कोई नहीं जानता, ये कोई जान भी नहीं सकता, सो दैट इज व्हाई ही से दिस इज एब्सोल्युटली अनोएबल, है ना, ह्यूमन माइंड कैन नॉट गो टू दैट फार। सो ये हमने थोड़ी देर में मैंने आपके साथ, क्योंकि हमारे ऋषियों ने बहुत खोज की है, बहुत सोच समझ के हमारे जीवन को अच्छी दिशा देने के लिए हमें बहुत शिक्षा दी है जिससे हमें लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं एक छोटा सा नया प्रसंग लाया हूं आपके सामने, ये वही स्लाइड है जो 12, 13, 14 में पतंजलि के तीन सूत्र आपको दिखाए थे, ये दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय रिवार्ड्स कम इन द प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ, इसकी हम काफी चर्चा कर ली, हमने स्कीमेटिक डायग्राम भी देख लिया और हमने देखा कि नेक्स्ट लाइफ का जो आता है वो एक बंडल के रूप में आता है जाति आयु भोग, लेकिन उसमें भी परमात्मा ने हमें बहुत दया करके दी है कि जाति तो हम नहीं बदल सकते, मनुष्य से घोड़ा कोई नहीं बन सकता, लेकिन उसी जाति को रहते हुए हम आयु और भोग को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज बी विलिंग टू अडॉप्ट पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव थिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उन्होंने 14वें में ये एट द टाइम ऑफ डेथ द बंडल ऑफ रिवार्ड इज डिटरमिंड इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज, व्हाट स्पीसीज आई विल बी बॉर्न एज, व्हाट विल बी नॉमिनल लाइफ स्पैन एंड नॉमिनल एक्सपीरियंसेस। ये नॉमिनल मैं इसलिए बोल रहा हूं दे कैन बी मॉडिफाइड प्रोवाइडेड यू मेक राइट काइंड ऑफ एफर्ट्स, एंड इफ यू मेड बैड एफर्ट्स और दूसरी निगेटिव डायरेक्शन में मॉडिफाई हो जाए। अब मैं 14वां सूत्र आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा मैंने कहा भी कि जो दुनिया में सुख और दुख दिखाई देता है दैट इज नॉट आर्बिट्ररी, दैट हैज डायरेक्ट लिंक विद पुण्य एंड अपुण्य। उसको मैंने कहा जॉय एंड पेन इन आवर लाइफ दैट वी सी आर ड्यू टू वर्चुअस एंड नॉन वर्चुअस कर्म, है ना। तो यहां मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूं कि पतंजलि ने पुण्य और पाप क्यों नहीं लिखा, पुण्य और अपुण्य क्यों लिखा, तो ये रहस्य बहुत समझना आवश्यक है। तो उसको मैं बता रहा हूं कि अपुण्य कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एज पाप, है ना, क्यों, तो मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं। इमेजिन देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, ए इज वॉकिंग अलोंग अ रोड, साइड वॉक पर चल रहा है, एंड ही सीज दैट ए पर्सन बी इज फॉल्स फ्रॉम ए मोटरसाइकिल ऑन द रोड एंड सस्टेन सीरियस इंजरी, कुछ एक्सीडेंट हो गया, है ना। सो बी पर्सन बी राइडिंग ए मोटरसाइकिल हैज मेट ए सीरियस एक्सीडेंट, नाउ द पर्सन ए हैज थ्री ब्रॉड ऑप्शन, है ना, डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर वन इज टू हेल्प बी, कैरिंग हिम टू ए नियर बाय हॉस्पिटल या 911 कॉल करके हेल्प एम्बुलेंस बुलानी जो भी है। नंबर टू, क्योंकि बी की स्थिति बड़ी असहाय है, ही इज ए वेरी हेल्पलेस, So the person A can take away his money and other belongings of B and run away. जैसे कोई देख ना आया हो, समझिए हुआ हो, कोई दिखाई नहीं दे रहा. Only two persons are in the scene and leaving the person B in distress. है ना? Which of course is पाप, है ना? हम सब बोलेंगे ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए. अब नंबर थ्री पर हम ध्यान देंगे. नंबर थर्ड ऑप्शन इज द पर्सन ए कैन कंटिन्यू विद हिज बिजनेस एज इफ द एक्सीडेंट डिडंट टेक प्लेस. उसने देख लिया है बट स्टिल ही इग्नोर्स इट बिकॉज ही इज वेरी बिजी. ही जस्ट गोज अवे. सो नंबर वन इज ऑफकोर्स पुण्य. नंबर टू इज ऑफकोर्स पाप. वॉट इज नंबर थ्री? है ना? तो नंबर थ्री के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो यहीं पर पतंजलि को समझना होगा. When he says this is apunya, he includes two and three both. आप समझ गए ना? Two and three both. लेकिन दोनों बराबर नहीं है. दो ऑप्शन नंबर टू तो इज एक्सक्लूसिव पाप, ये तो बहुत गंदा काम है. लेकिन नंबर थ्री वाले ने भी पुण्य करने का अवसर खो दिया. पुण्य करने का अवसर खो दिया और उसने ऐसे अभिनय किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. ये पाप जितना बुरा तो नहीं है लेकिन पुण्य से बहुत बुरा है, है ना? तो इसको हमारी शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है अपुण्य कर्म, है ना? तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन पाप नहीं हो सकता. किताब लिखने वाले बहुत तरह से लिख देते हैं, बहुत कुछ बातें समझे बिना भी. पर मैं इसलिए आज ये बोल रहा था, जन्माष्टमी है, कर्मफल सिद्धांत की मीमांसा हम कर रहे हैं. और इसलिए भी कि जैसे हमने हार्वी की स्लाइड देखी, अभी संजय सूद जी हमें केरल की बाढ़ की स्लाइड भी दिखाएंगे. तो हम पुण्य तो वहां जाकर ज्यादा नहीं कर सकते, पर लेट अस नॉट बी इन ऑप्शन टू और थ्री. टू वाले तो हम लोग हैं भी नहीं कि वहां जाकर कुछ गलत काम करेंगे. पर ऑप्शन थ्री भी है कि हम चुपचाप बैठे हैं और कुछ भी ना कहें, ये भी गलत है, ये भी अपुण्य होगा. तो ये मैं ये आपसे आज के व्याख्यान में ये आई वॉन्टेड टू शेयर दीज आइडिया. थैंक यू फॉर योर अटेंशन. एक मिनट, मैं थोड़ा कहना चाह रहा हूं. व्याख्यान तो